ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इतने सारे कुमारों को देखकर मन अति हर्षाया है। आप सभी भारत के कोने कोने से मधुबन तपोभूमि वरदान भूमि में पधारे हैं। पिछले 2 साल तो मधुबन आना नहीं हुआ और इस साल तो बहुत अच्छी रौनक लग गई है और इस शांतिवन के डायमंड हॉल की रौनक तो और ही बढ़ गई है और आपके कारण। हम जानते हैं कि आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारियां होंगी, जॉब भी करना चाहे बिजनेस करना, साथ साथ परिवार को भी संभालना और फिर बाबा के ज्ञान में भी समय निकाल सेवाएं करना। सेवा केंद्र पर राइट हैंड बन करके सेवाओं को आगे बढ़ाना तो डबल जिम्मेदारी आपके ऊपर है, हम मानते हैं। लेकिन जो विषय हमें दिया गया है आपके लिए बड़ा ही उपयुक्त है कि ये जिम्मेदारियां संभालते हुए भी हम जीवन मुक्त स्थिति कैसे बनाएं। जब जीवन मुक्ति शब्द आता है तो राजा जनक की कहानी याद आती है। राजा जनक महलों में रहता था, इतनी बड़ी रियासत संभालता होगा, राजा ही थी उनको, प्रजा का भी ध्यान रखना होगा, ध्यान रखता था, सब कुछ करता था, लेकिन फिर भी उसके लिए कहते हैं वो जीवन मुक्त राजा था। तो कैसे वो जीवन मुक्त राजा बना तो उसकी कहानियां तो बहुत है, लेकिन राजा जनक के साथ अष्टावक्र की कहानी जुड़ती है कि अष्टावक्र उनके गुरु थे। बड़ा कुरूप था वो अष्टावक्र, उसके शरीर में 8 कुंभ थे, बेढंगा था, लेकिन फिर भी ऐसे को गुरु बनाया क्योंकि उसने उनकी आंखें खोल दी। उनका एक ही प्रश्न था कि मुझे सेकंड में जीवन मुक्ति चाहिए, सेकंड में, एक सेकंड। लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं चाहिए, सेकंड में जीवन मुक्ति जो मुझे दे सके उसको मैं गुरु बनाऊंगा। और अष्टावक्र ने कैसे उसको एक सेकंड में जीवन मुक्ति का ज्ञान दिया, क्योंकि देख रहा था सारे जो भी पंडित थे, विद्वान थे, वो बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे। उसने कहा नहीं, ये सब नहीं चाहिए, एक सेकंड में जीवन मुक्ति चाहिए, लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं चाहिए। तो अष्टावक्र ने एक लाइन में उनको जीवन मुक्ति की परिभाषा बताई। उस पर भी कई कहानियां हैं, लेकिन एक जो प्रसिद्ध कहानी है कि वो सबसे परेशान होकर के वापस जा रहा था, तो घोड़े पर चढ़ रहा था और अष्टावक्र वहां पहुंच गया। अष्टावक्र ने उनको देखा, उसने कहा मैं आपको एक सेकंड में ज्ञान दूंगा। तो घोड़े पर चढ़ रहा था, एक पांव उसका घोड़े के वो सैडल पर था जहां पांव रखते हैं घोड़े पर, और दूसरा पांव धरती पर था। अब एक पांव तो रख चुका था, अभी वो जंप मार के दूसरे पैर को भी घोड़े पर उस तरफ रखना था, लेकिन एक पांव ऊपर एक पांव नीचे था। तो राजन, तो अष्टावक्र ने उसको रोका और कहा, राजन आप कहाँ हो, आप इस वक्त कहाँ हो? तो कहा घोड़े पर, लेकिन एक पैर तो धरती पर था। तब अष्टावक्र ने एक वाक्य में कहा, आप घोड़े पर हो और फिर भी घोड़े पर नहीं हो, क्योंकि एक पैर तो धरती पर था। राजाई है, जीवन है, लेकिन फिर भी मुक्ति की अवस्था है और नहीं है, संसार में है और संसार में नहीं है। ये है एक सेकंड में जीवन मुक्ति। हाँ, है क्या समझना मुश्किल? एक सेकंड में जीवन मुक्ति माना, हम दुनिया में हैं और दुनिया में नहीं है, ये है जीवन मुक्ति। जीवन में है और मुक्ति है, मुक्ति में है। जीवन का मतलब क्या है? जन्म मरण, कर्म फल, पाप पुण्य, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, निंदा स्तुति, मान अपमान, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी, ये जीवन के दो पहलू हैं और ये बदलते रहते हैं। आज जवान है, कल आयु तो बढ़ेगी, आज निरोगी है, कल रोगी होंगे, आज बहुत धन है, कल दिवाला मार देंगे, आज परिवार के बीच में है, कल अकेले भी होंगे। इस संसार में सब कुछ सापेक्ष है, एवरीथिंग इज रिलेटिव, सापेक्ष है। जो आज है कल नहीं रहेगा, और जो आज नहीं है वो कल मिल जाएगा। क्या बड़ी बात है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा कहते कुछ नहीं मिलता, तो शायद समय नहीं है इसलिए नहीं है, शायद इस समय ड्रामा में नहीं है पार्ट, इसीलिए अब कोई अफसोस नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। आज कोई कुर्सी पर है, कल कुर्सी से उसको उतार देंगे, आज वो ऐश कर रहा है, मोटर गाड़ियों में घूम रहा है, हवाई जहाजों में घूम रहा है, और कल देखो उसको जेल में डाल दिया। है ना, दुनिया में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सब हो रहा है। इसीलिए ये जो सारा संसार है ये परिवर्तनशील है। अभी दिन है, फिर कुछ घंटों के बाद रात शुरू हो जाएगी। ये जीवन है, लेकिन जीवन मुक्त किसको कहेंगे, जीवन बंधन किसको कहेंगे? जीवन मुक्त माना ये सब कुछ होते हुए भी उसमें फंसे हुए नहीं है, हर चीज जो आए स्वीकार किया और उसमें खुश रहे। क्योंकि पता है कि ये भी रहेगा नहीं, ये भी बीत जाएगा। एक मिसाल देते, कहानी बताते हैं कि एक राजा था, उसके राज्य पर अन्य राजा ने चढ़ाई की और चढ़ाई करके जैसे एक युद्ध छेड़ दिया। अब ये राजा के तो सिपाही इतने तैयार नहीं थे, लेकिन उस राजा को इस राजा पर आक्रमण करना था, महल पर सीधा आक्रमण, उसके जो राजधानी थी। तो उनके सिपाहियों ने कहा कि अब यही तरीका है कि राजा को वहां से कहीं छिपाया जाए। तो राजा को ले गए, राजा को ले गए और कोई गुफा में उनको छिपा दिया। लेकिन उस राजा के पास किसी संत ने एक बहुत अच्छी तावीज दी थी, तावीज, एक डिब्बी थी तावीज, यहां रखते हैं कई बार गले में वो बांधते हैं, और कहा था कि जब कोई ऐसी समस्या आ जाए, बहुत विकराल समस्या आ जाए, बहुत कष्टदायक सब बात आ जाए, उस समय ये डिब्बी खोलना, केवल उस समय ये डिब्बी खोलना, इसमें बहुत अमूल्य खजाना है। अब उसको ये गुफा में छिपा दिया। अब अंदर में तो बहुत डर था कि वो अटैक करेगा, उसके सिपाही कहां गुफा में भी ना आए हमको ढूंढने। तो उसी वक्त उसको वो तावीज याद आया और उसी वक्त उसने वो खोला, और जब खोला तो उसमें अंदर एक छोटी सी चिट्ठी थी, कागज, और उस कागज पर लिखा हुआ था, ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा। तीन बार लिखा था, ये भी बीत जाएगा, बस और कुछ नहीं। अब वो पढ़ता गया, तीन बार पढ़ा, ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा। तो जैसे पढ़ता गया उसका मन शांत हो गया, बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा, और एकदम मन शांत मन से वहां पर जैसे खड़ा हो गया। सिपाही आए दुश्मन के, चारों ओर देखा, लेकिन ये एक सा निश्चिंत बैठा था, ये भी बीत जाएगा, और वो घूम फिर करके चले गए। अब गुफा में कौन अंदर जाएगा। और फिर वो चले गए, क्योंकि फिर उसके बाद उनके सिपाहियों ने लड़ाई की और उनको भगा दिया, राजा की सोल्जर्स को, सिपाहियों को। अब जब वो वापस वो चला गया, वो दुश्मन का राजा, दुश्मन राजा, अब ये सिपाही इसके आए और कहा कि राजन अब चलो वापस। वो दुश्मन चला गया, उनको भगा दिया। अब ये तो शांत मुद्रा में अंदर बैठा ही था, और फिर वापस उसको महल में ले आए, और जैसे महल में आया खूब शाद माने हुए, शहनाइयां बजी, खूब ढोल बजे, लोगों ने नाचा गाया, इतनी खुशियां मनाई कि हमारे राजा वापस आ गए। अब उस समय उसको इतनी खुशी, इतनी खुशी, लेकिन कहा ये तावीज फिर से खोलता हूं। तो तावीज को फिर से खोला, ये भी बीत जाएगा ये भी बीत जाएगा, माना इतनी जो खुशियां हैं ये भी कोई सदा नहीं रहेगी, ये भी बीत जाएगा। तो वो एकदम स्थिर हो गया। अब वो खुशियां जो औरों को थी वो शांति था, और उस शांति से वो अंदर महल में आया। लोग कितनी भी खुशियां मना रहे थे पर वो शांत था। तो ये भी बीत जाएगा, ये कितना बड़ा सबक है। वास्तव में यही जीवन मुक्त स्थिति है। क्या है जीवन मुक्त स्थिति? ये भी बीत जाएगा। क्या है जीवन मुक्त स्थिति? है और नहीं है। और सबसे सुंदर उदाहरण जीवन मुक्त स्थिति का कौन सा देते हैं? कमल के फूल का। कमल का फूल कीचड़ में रहता है, उसकी सार उसका सारा परिवार कीचड़ में है, कमल डंडी, कमल पत्ते, कमल जड़े, सब कीचड़ में है, लेकिन कमल का फूल ऊपर है, कीचड़ से ऊपर। ये है जीवन मुक्त स्थिति। जीवन में रहते हुए भी ये जो रिलेटिविटी है, जो सापेक्षता है, इससे न्यारा। और गीता में साफ शब्दों में आता है, ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण क्या है। ज्ञानी तो आत्मा किसको कहेंगे? ज्ञानी तो आत्मा वो है जो मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख, इन सब में समान रहता है, इन सब में समान रहता है। अगर समान नहीं रह सकता है वो ज्ञानी तो आत्मा नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो हमें यही सिखाता है ना कि समान रहो, न हमें फंसना है न हमें छोड़ना है। छोड़ करके कहाँ जाएंगे? कायर कहलाएंगे। अर्जुन मैदान छोड़ के जाना चाहता था, मैं नहीं लड़ूंगा, हथियार छोड़ दिए, लेकिन भगवान ने अर्जुन को क्या कहा? अगर तुम छोड़ के मैदान चले जाओगे तो तुम कायर कहलाओगे, तुम कायर कहलाओगे, तुम्हारी आगे की पीढ़ियां क्या कहेगी कि अर्जुन कायर था। इसीलिए कायर मत बनो, लड़ो लड़ो। भागना तो कायरता की निशानी है। बाबा सन्यासियों के लिए कहते हैं ना, स्त्री को नागिन समझ लिया और ये डसेगी मुझे, चलो। एक मैं छोटा सा मिसाल देती हूँ। मैं बॉम्बे में क्या सेंटर पर रहती थी तब, तो एक सन्यासी कोर्स करने आता था, मैं उस सन्यासी को कोर्स कराती थी। तो कई बार बाबा मुरली में कहते हैं कि सन्यासी से अगर पूछो आपने सन्यास क्यों किया, आपका पूर्व जीवन कैसा था, वो बताते नहीं है। वो कहते हैं बहन जी मैं तो मर गया उस जीवन से, अभी तो मैं सन्यासी हूँ, तो बताते नहीं है, अक्सर नहीं बताते हैं। लेकिन उसने बताया कि मैंने क्यों छोड़ा, क्यों मैं सन्यासी बना। तो उसने बताया कि किसी लड़की से उसका प्यार हो गया। अब बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन बड़ी डिमांडिंग थी, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, और क्योंकि प्यार था तो उसकी सब इच्छाएं पूरी करता था, जैसे सारी तनख्वाह उसके पीछे लगा देता था। लोभी भी थी। धीरे धीरे चलो बच्चे शादी हुई, तो शादी हुई तो उसका लोभ तो और बढ़ गया। पहले तो चलो फिर भी कम होगा, अब शादी हुई तो अधिकारी बन गई, देना ही पड़ेगा। तो उसने नौकरी छोड़ी और धंधा करने लगा कि उससे और कमाई होगी। अब अच्छी कमाई होने लगी तो उसकी भी फिर इच्छाएं पूरी करने लगा। फिर बच्चे हुए, फिर बच्चों की भी बातें तो आती है, तो उनकी भी इच्छाएं पूरी, फिर तो उसकी इच्छाएं और बढ़ गई, मेरे माँ के लिए, बाप के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे फलाने के लिए, फलाने के लिए। अब कहता है मैं इतना परेशान हो गया, मैंने कहा छोड़ो ये गृहस्थी छोड़ो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये संसार छोड़ो, और जाकर मैं सन्यासी बन गया। तो देखो, क्योंकि पहले उसने कहानी नहीं बताई, उसने ये कहा कि मैंने अपनी पत्नी के कारण सन्यास धारण किया। तो मुझे लगा इनकी पत्नी तो बहुत अच्छी होगी बहुत अच्छी होगी, उसको संन्यास कैसे करना है, वैराग्य दिलाया होगा पत्नी ने, पर यहाँ तो उल्टा हो गया एकदम उल्टा हो गया, इसीलिए वो सारी कहानी सुनाई। तो कहते हैं ना, शादी बर्बादी, ये दिल्ली का लड्डू खाओ तो भी पछताओ और न खाओ तो भी पछताओ, ऐसा है ये हाल इस कलयुगी दुनिया में। इसलिए बाबा ने तो हम लोगों को बचा दिया है, सच कहो, जो समझते हम बच गए हैं वो हाथ उठाओ। बिल्कुल बिल्कुल, बचा दिया बाबा ने, उस नरक में जाने से बचा दिया है। आज भी बाबा ने कितना वैराग्य दिलाया मुरली में। ये सब कलयुगी दुनिया क्या है, कड़वी दुनिया है, कड़वी दुनिया है, कुंभी पाक नरक है, विषय वैतरणी नदी है, सब एक दो को जैसे डस रहे हैं, ये हालत है इस कलयुगी दुनिया की। तमो प्रधानता कितनी बढ़ती जा रही है, सारे विकार कितने बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग चित्र दिखाते हैं ना, कैसे वो अधर्म सारी धरती को जकड़ चुका है, राक्षस, अधर्म का राक्षस, और नीचे से विकारों की आग जल रही है और ऊपर से बमों की आग, बमों की आग ऊपर से नीचे आ रही है। तो नीचे भी आग और ऊपर भी आग, काम वासना की भी आग तो ईर्ष्या की भी आग, ऐसा आज का मनुष्य हो गया है। और फिर क्या कहता है, जैसे आज बाबा ने कहा, मन की शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए। घूमता फिरता रहता है सन्यासियों महात्माओं के पास, गुरुओं के पास, मन की शांति चाहिए। और बाबा क्या कहते हैं, मन की शांति कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, हाँ कहाँ मिलेगी, तुम्हारे अंदर ही मिलेगी, बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगी। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम का वासी हूँ, शांति के सागर परमात्मा की संतान हूँ। ये संकल्प किया और शांति तो तुम्हारे गले का हार है, यही है ना निश्चय। इसीलिए शांति को हमें और कहीं ढूंढना नहीं है, पर वो मैं शांत स्वरूप हूं ये निश्चय इतना पक्का चाहिए। ये भूल की है बाबा ने आज का ना, दो भूले हुई है, मन की शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए। अरे मन का तो काम ही सोचना है, ये मन की शांति चाहिए ये सोचना भी गलत है, मन का तो काम सोचना ही है। अब घोड़े को आप खूब खिलाते पिलाते रहो और कहो शांत बैठो शांत बैठो शांत बैठो, अरे घोड़े का तो काम ही दौड़ना है, वो कैसे शांत बैठेगा। इसीलिए मन की शांति ये शब्द ही गलत है, क्योंकि मन का काम सोचना है, पर क्या सोचना है अब उसके आप मालिक हो। इसलिए जीवन मुक्ति अवस्था किसको कहेंगे, केवल देवताओं की स्थिति नहीं है जीवन मुक्ति। वास्तव में जो कमल का फूल देवताओं के लिए दिखाते हैं, सब कमल आसन पर देवताओं को दिखाते हैं, ये कमल देवताओं के लिए नहीं है। देवताओं के अंग अंग को कमल से भेंट करते हैं, विष्णु के हाथ में भी कमल दिखाया है, पर ये अलंकार बाबा कहते तुम्हारे हैं, तो कमल भी तो हमारा ही है ना, यादगार हमारा अलंकार है, पर क्यों देवताओं को दे दिया, क्योंकि हम गिरा देते हैं, कमल कीचड़ में चला जाता है। देवताओं के अंग अंग को कमल से भेंट करते हैं, नैन कमल, मुख कमल, हृदय कमल, मस्तक कमल, चरण कमल, है ना, एक एक अंग कमल से भेंट, यानी दुनिया कीचड़ की है लेकिन ये इंद्रियां हमारी न्यारी और प्यारी है। और योगी की निशानी क्या है? योगी उसको कहेंगे जिसकी कभी मूड बदलती नहीं है। अगर मूड बदलती है ये भी देह अभिमान की निशानी है। हाँ, मूड बदलती है, अभी देखो जोर जोर से हंसेगा, अभी देखो इतना रो रहा है, बात मत पूछो, अरे अभी तो हंस रहा था अभी रो रहा है, अभी तो इतना चिल्ला रहा है अभी देखो एकदम जैसे शांत हो गया, जैसे गुंगा हो गया, क्या हो गया? गिरगिट कैसे अपने रंग बदलता है, तो मनुष्य की आज वो स्थिति है। और परिणाम स्वरूप अपने को ही दुखी करता रहता है। और बाबा ने हमें क्या कहा है? बच्चे न्यारे भी रहो प्यारे भी रहो, छोड़ो भी कुछ नहीं, फंसो भी कहीं नहीं, छोड़ना भी नहीं है फंसना भी नहीं है, पर नया भी नहीं जोड़ना है, क्योंकि नया जोड़ेंगे तो कब वो हिसाब किताब चुकतू करेंगे। नया भी नहीं जोड़ना है, कोई कर्म बंधन नया नहीं जोड़ना है, कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जो बंधन बन जाए, तो नया भी नहीं कुछ जोड़ना है। ये बिजनेस खोलूं, ये करूं, वो करूं, दुकान करूं, ये करूं, बाबा कहते जरूरत नहीं है, जो है संतुष्ट रहो। इतना हाँ बहुत कुछ किया फिर देखो हार्ट अटैक आ गया, देवाला मार दिया, तो क्या नहीं होता आज की दुनिया में, सब ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ भी स्थिर नहीं है। इसीलिए बहुत महत्वाकांक्षाएं भी नहीं रखो। हाँ पढ़ाई करो, क्यों नहीं, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई वो भी काम आए तब ना, अगर काम कुछ आनी नहीं है तो फिर इतनी पढ़ाई करके भी क्या करना, काम आनी चाहिए ना। चलो MBA करते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट है जो भी है उसमें बिजनेस करते हैं, या आजकल तो बहुत प्रकार के कोर्सेज हो गए हैं, तो लक्ष्य ओरिएंटेड है कि मुझे जीवन में ये जॉब लेना है ये करना है, तो उस अनुसार पढ़ाई करो। ऐसे नहीं ये अभी ये पढ़ा अभी BA किया फिर BSc किया फिर ये किया फिर वो छोड़ा, उसमें भी कितना टाइम वेस्ट होता है, समय श्वास संकल्प शक्ति संपत्ति सब वेस्ट होता है। इसीलिए कोई लक्ष्य ओरिएंटेड हो, लक्ष्य ओरिएंटेड भी हो और साथ साथ बाबा ने हमें सन्यासी नहीं बनाया है, बाबा कहते ये परिवार है, ये प्रवृत्ति मार्ग है, ये दुनिया लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग है, राम सीता प्रवृत्ति मार्ग है। तो कई कुमार कहते हैं कि फिर हमारे माता पिता कहते हैं तो लक्ष्मी नारायण जैसे बनो ना, राम सीता जैसे बनो ना, विवाह करो, लेकिन वो तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है या तो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। आज भी बाबा ने कहा कि लौकिक पिता जबरदस्ती मान लो शादी कराते भी हैं, फिर बच्चा हुआ तो वो इतने खुश होते हैं वाह, क्योंकि बच्चे को नरक में ढकेल दिया, खुश होते हैं वो समझते मैंने बहुत अच्छा किया, लेकिन उसको नरक में डाल दिया, पर समझते अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई। पर ये कर्मों का बंधन बनता जा रहा है। इसीलिए छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, जो है उसको छोड़ना नहीं है, नया जोड़ना भी नहीं है, और फंसना तो बिल्कुल नहीं है। फंसना माना उसमें ऐसे लिप्त हो जाना कि वही सब कुछ है, वो भी सब कुछ नहीं है, जो दिखाई देता है वो सब कुछ नहीं है। इसलिए न छोड़ना है न नया जोड़ना है न फंसना है, पर एक चौथा काम करना है वो है निभाना है, निभाना भी है। आज बाबा ने मुरली में खास कुमारों को तो भले वो शब्द नहीं कहा लेकिन याद जरूर किया, किस रूप में? बाबा कहते पवित्र हाथ का खाना खाओ। अब आपको तो कितना ट्रैवलिंग करना पड़ता है, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, पवित्र हाथ का कहाँ खाना मिलेगा? तो मुझे याद है बड़ी दादी जी ने कुमार आए थे, कुमारों की बच्ची थी कुछ साल पहले, जब बड़ी दादी जी क्लास भी कराते थे कुमारों का, तो मुझे याद है कुछ कुमार दादी के पास आए थे। दादी जी हम कुमार हैं, हमको बहुत कारोबार भी होता है, तो हम खाना कैसे पकाएं? हम खाना नहीं पका सकते हैं, और घर में माता पिता है तो माँ खाना बनाती है, लेकिन पता नहीं पवित्र तो नहीं रहती होगी क्योंकि बहुत तो बुजुर्ग नहीं भी थे। तो क्या मेरी माँ का हाथ का खाना खाना पड़ता है? खाना पड़ता, नहीं खाता हूँ तो उनको बहुत दुख होता है कि मैंने तुमको जन्म दिया और मेरे हाथ का नहीं खा रहे हो, तो दादी हम क्या करें? तो दादी ने उस समय उनको कहा था कि अपने माँ के हाथ का भले खाओ, मना नहीं है, क्योंकि माँ को ऐसा दुख भी नहीं देना है, आखिर माँ है, और कोई नहीं भले पर माँ है। कई तो इतने कट्टर होते हैं, अगर किसने क्रोध भी किया ना तो भी कहेंगे इसके हाथ का नहीं खाऊंगा, है कट्टर, पानी भी नहीं पीते हैं, बहुत हमने देखे वो भी भाई। लेकिन बाबा कहते हैं कि योग में बैठकर भोजन को शुद्ध कर सकते हो, पर ऐसे नहीं सब जगह, खुली छुट्टी नहीं है, परंतु माँ के हाथ का तो नहीं खाएंगे तो ये भी उसको बहुत दुख होगा, ये दुख तो फिर आपको लगेगा ना। बाबा कई मिसाल देते हैं, अब मिलिट्री वाले हैं, मिलिट्री वाले अभी कहाँ वो खाना पकाएंगे, लेकिन अब उनको मेस में खाना पड़ता है, तो बाबा के पास आते थे, दादियों के पास आते थे और कहते थे कि क्या करें, हमको मेस में खाना पड़ता है, तो वो तो पकाने वाले तो वो लहसुन प्याज डालते हैं, अब वो तो डालते हैं, मैं क्या करूं? तो दादी ने एक बार, शायद बाबा भी कई बार कहते थे, दादी ने भी कहा कि वो जो मेस में खाना पकाता है ना, उसको आप अपना दोस्त बना लो और उसको कहो कि देखो तुम सब दाल बनाते हो, सब्जी बनाते हो, उसमें आप बघार डालते हो लहसुन प्याज का, पर वो डालने से पहले मेरे लिए निकाल के रख दो, क्योंकि मैं लहसुन प्याज नहीं लेता हूँ, तो वो आपके लिए निकाल के रखेंगे, उसको मित्र बनाओ, दोस्त बनाओ, तो आपके लिए निकाल के रख देंगे, फिर तो भले खाओ ना, खाना तो पड़ेगा, कहाँ जाएंगे नहीं तो, मेस में भी खाना है, मिलिट्री वाले होते हैं, खाना तो पकाएंगे नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने आप को एडजस्ट भी करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि बाबा कहते नहीं नहीं ऐसे कोई लकीर के फकीर भी नहीं है। तो क्या योग में रह के भोजन को पवित्र नहीं बना सकते हो? पर हाँ, कुछ मर्यादाएं हैं, रखो, जरूरी है, ये नहीं जिसने जो आया खाया। इसलिए बाबा हम बच्चों को मर्यादाएं भी सिखाते हैं, और आजकल तो और भी जरूरी है, ऐसे जहां भी आया खाया, पता नहीं वो कैसा है भोजन, कैसे बनाया गया है, क्या उसमें डाला है, होटलों में तो देखो क्या क्या सुनाते रहते हैं, पिछले दिन का बासी रोटी या बासी देखो वो मिक्स कर देते, पता भी नहीं चलता है, घर में तो खूब चिल्लाएंगे ये बासी है, अब होटल में जाके खाएंगे वो कौन सा फ्रेश है, हाँ बासी होता है कि नहीं? कई बहुत होता है, कई ऐसे हैं जो घर में भी कहेंगे, आजकल तो बड़े हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, माँ को कहेंगे माँ तेल इतना नहीं डालो, ये घी नहीं डालो, घी नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, अब माँ तो पुराने जमाने की है, वो कहेगी बेटा ये गाय का घी है, बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा है। नहीं नहीं घी खाऊंगा, मोटा हो जाऊंगा मोटी हो जाऊंगी, बहुत करते हैं। तो एक बार मैं समझती मोदी जी के लिए था, तो मोदी जी के पास कोई आया कि यहाँ जो लड़कियां हैं ना वो बड़ी माल नरिश्ड है, माना वो खाना ये पतली दुबली है और इनको खून नहीं है, अब इतना उनको अच्छा खाना मिलता है तो भी क्यों ऐसे है। तो पता चला कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, हाँ ये मोटी हो जाऊंगी ये हो जाऊंगी, तो इसीलिए मोटी हो जाऊंगी इसलिए खाना ही छोड़ देते हैं, और फिर पीली हो जाती है, खून नहीं है खून नहीं है, क्योंकि खाती नहीं है, पतली होना है पतली होना है। अब बाबा कहते हैं उसके पीछे ही लगे रहते हैं, और मन इतना भारी है वो पतला होना है वो तो सोचते ही नहीं है, इतना बोझ उठा के चल रहे हैं दिमाग में, भारी मन कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, बाबा ने हमें सद्बुद्धि दी है, किस समय क्या करने की आवश्यकता है वो करो, बाबा की टचिंग मिलेगी। आज भी बाबा का वरदान था, टचिंग मिलेगी, ज्यादा चिंता नहीं करो, टचिंग मिलेगी। हम तो अपना बहुत अच्छा अनुभव सुनाते हैं इस मामले में, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कई इतनी चिंता करते हैं, हम कहते देखो समय पर सब ठीक हो जाएगा, और सचमुच समय आता है, कैसे वो बात बन जाती है, नहीं तो कितना ही घंटा उसके लिए वेस्ट करते होते, सब ठीक हो जाएगा। और आज बाबा ने क्या कहा, कौन है साथी हमारा, हाँ कौन है साथी हमारा, बोलो कौन है, हाँ हजार भुजाओं वाला हमारा साथी है। तो जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, ये आंधी तूफान कुछ भी नहीं है, ये सब मेरे कर्मों के हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। एक बार हंसी की बात बाबा की मुरली में आई थी, कोई स्त्री ने बाबा को कहा बाबा मेरा पति बहुत मारता है, तो बाबा ने उसको हंसी हंसी में कह दिया किसी जन्म में तुमने भी उसको मारा होगा किसी जन्म में तुमने भी उसको मारा होगा, नहीं इसलिए रिटर्न कर रहा है ना, तो दुखी थोड़ी होना है, इसका मतलब है कि तुमको उसको मारना है, नहीं तो हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। जब बाबा कहते हैं बच्चे क्रोध नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, अब वो गाली दे रहा है और हमको गुस्सा भी ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है। आज भी बाबा का वरदान तो यही था ना, कोई गाली दे हाँ कोई गुस्सा करे, मुरली में था ना, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, शिव बाबा क्या ने क्या किया, शिव बाबा को कितनी गालियां देते हैं भक्ति मार्ग में, तो कितनी गालियां दी, सर्वव्यापी कहना ये गाली है, लेकिन शिव बाबा अपकारियों पर अपकार थोड़ी करते फिर भी उपकार करते हैं। ब्रह्मा बाबा ने कितनी गालियां खाई, बहुत गालियां खाई, क्या क्या उनके ऊपर कलंक लगे, कई कलंक लगे, सबसे बड़ा कलंक तो ये लगा क्योंकि बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, तो लोग तो कहते थे जादू है जादू है जादू है, जो उनको देखता था बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार करते थे, और बाबा कहता था कोई जादू नहीं है, ये कहते ये जादूगर है, बाबा के लिए कहते थे भाई मेरे मुझे तो जादू तो आता ही नहीं है, मैं तो तुम्हारे जैसा ही था और हूँ, मैं कहाँ से जादू सीख के आऊंगा, मुझे नहीं ये जादू आता है, मैं तो उस परमात्मा को याद करता हूँ बस, अब उनको क्या कराना है वो जाने। फिर दूसरा कलंक क्या लगाया, क्योंकि उस समय 400 के लगभग बहनें थी समर्पित बाबा के पास थी, तपस्या कर रही थी, तो लोगों ने क्या जादू क्या कलंक लगाया कि ये अपने आप को कृष्ण समझता है मैं कृष्ण हूँ, श्री कृष्ण हूँ, और मुझे 400 रानियाँ मिली है और मुझे 16108 रानियाँ चाहिए। अब बताओ, श्री कृष्ण को 16108 रानियाँ थी, वो दिखाते हैं ना, तो इसलिए अभी तक मेरे को 400 ही मिली है, तो मैं श्री कृष्ण हूँ और मुझे 16108 रानियाँ चाहिए। अब बाबा कहते ये तो मेरी बच्चियाँ हैं, ये तो मेरे बच्चे हैं, हाँ रानियों की क्या बात है। लेकिन कलंक लगे जब शिव बाबा ने बाबा को कहा कि अब ये सब प्रतिज्ञा करें कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। यज्ञ में बाबा ने प्रतिज्ञा कराई थी, सब कुमारियां छोटी छोटी थी, कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे, और बाबा ने भी प्रतिज्ञा की, वो भी तो फैमिली में रहते थे ना, सारा परिवार था उनका, युगल थी, बच्चे थे, पोते दोते सब थे, बड़ी आयु थी ना, तो बाबा ने भी प्रतिज्ञा की। और जब सबने प्रतिज्ञा की तो लोगों ने कितना विरोध किया, अरे ये छोटी छोटी बच्चियां, आपने इनसे प्रतिज्ञा करा ली कि हम अपने जीवन को पवित्र योगी बनाएंगे, इन्होंने तो दुनिया देखी कहां है, दुनिया देखे, बड़ी हो, समझदार बने, तब खुद निर्णय करे अपने जीवन का। तो बाबा ने कहा ये मैंने नहीं कहा है, ये मैंने नहीं कहा है। तो किसने कहा है? ये ऊपर वाला कह के चला गया, ऊपर वाला कह के चला गया। अब ऊपर वाले को कौन पकड़े? पकड़ सकता है कोई ऊपर वाला? वो तो कह के चला गया। एक बहुत बड़ा किस्सा था, जब 1962 में चाइना ने इंडिया पर अटैक किया था नेहरू जी के समय, उसके पहले नेहरू जी ने सबको एक स्लोगन दिया था, हिंदू चीनी भाई भाई, बाबा की मुरली में आता है वो, मुझे याद है 1962 का किस्सा, हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई, और भाई भाई क्या कहा, और चाइना ने इंडिया पर अटैक किया 62 में, और अटैक किया, इंडिया तो तैयार नहीं था, भारत तैयार नहीं था लड़ाई झेलने के लिए, तो नेहरू जी को तो बहुत सदमा पहुंचा, और 64 में तो उसको हार्ट अटैक आ गया, मतलब वो सदमा, चाइना जो दोस्त जिसको बना रहा था उसने ही आक्रमण किया, और कितना हमारा हिस्सा भारत का, जो अभी भी वो लड़ाई चल ना, वो भी कितना भारत को सावधान रहना पड़ता, वो चाइना अटैक करता रहता है, हमारी भारत की जमीन लेने के लिए तैयार है, तो वो तो बहुत जमीन ले ली थी, तो जब बहुत जमीन ले ली तो अब बाबा न्यूज तो बाबा पढ़ते थे, तो शिव बाबा ने कहा कि बच्चे छोड़ो, अभी ये थोड़ी सी जमीन ली है लेने दो, पर वो समय आएगा जब सारा भारत सारे विश्व पर राज्य करेगा, ये जमीन तो थोड़ी सी है, सारे विश्व पर राज्य करेगा, ये सब वापस मिल जाएगा, भारत सिरताज बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा। शिव बाबा ने बहुत कुछ कहा मुरली में। अब ये जो बाबा की मुरली में आया कि बच्चे छोड़ दो, ये क्यों पीछे पड़े हैं, एक दिन आपको सब वापस आ जाएगा, पर वो सब वापस आ जाएगा ये शब्द नहीं पढ़ा, पर किसने पढ़ लिया, ये कहता है कि उनको छोड़ दो, लेने दो जमीन, लेने दो, तो कहीं ये चाइना का, ये लोग चाइना के CID तो नहीं है, इतने तक न्यूज फैली, ये चाइना की कोई CID है, हाँ ये उनका पक्ष ले रहे हैं, चाइना का पक्ष ले रहे हैं, पर बाबा ने तो कितने बड़े माना बेहद भाव से कहा कि एक दिन भारत सारे विश्व का गुरु होगा, सारे विश्व को जीतेगा। तो ये जब बात गवर्नमेंट में पहुंच गई और कैसे, उसके बाद कुछ लोग जो गवर्नमेंट के थे वो आए और बाबा से मिलने आए, माउंट आबू आए, क्योंकि यही बात थी, ये किसने कहा है, तो कहा वो तो बाबा माउंट आबू में रहते हैं, और बाबा के पास आए, और बाबा तो क्या पर्सनालिटी थी उनकी। और बाबा के पास जैसे गए उन्होंने सोचा हम बाबा से जोश से बात करेंगे, पर बाबा के आगे जा करके बैठ गए सीधा शांत होके। और बाबा को कहते बाबा ये आपका जो आपके ये महावाक्य हैं और ऐसे ऐसे आपने कहा है तो ये तो भारत के लिए ठीक नहीं कहा है। तो बाबा ने बहुत हल्के से कहा बच्चे ये तो ना ऊपर वाला आके कह के चला गया, ये ऊपर वाला वो आया था और ये कह के चला गया, अब वो फिर जब आएगा ना तो हम उनको कहेंगे कि ऐसे मत कहे। और बात खत्म हो गई, वही बात पूरी हो गई। तो देखो ऐसी ऐसी बातें भी बाबा के सामने कितनी आई, कलंक ऐसे लगे इस संस्था पर क्या नहीं कलंक लगे। ये भाई बहन बनाते हैं, एक तरफ कहते भाई बहन बनाते हैं माना इतनी पवित्र दृष्टि सिखाते हैं, ये कितनी ऊंची बात है। आजकल भाई बहन की भी दृष्टि पवित्र नहीं है, भले सगे भाई बहन है तो भी पवित्र दृष्टि नहीं रहती है। और ये भाई बहन बनाते हैं और फिर दूसरा कलंक क्या लगाते हैं कि वहां तो जवान जवान लड़के हैं, जवान जवान लड़कियां हैं, पता नहीं आपस में क्या संबंध होगा। अब बताओ कहां भाई बहन बनाते हैं, कितना पवित्र संबंध, और कहां वो उल्टी सोच उनके मन में आती है। तो ये कलंक है ना, ये सब कलंक है। बाबा कितनी ऊंची बातें करते हैं। कल भी बाबा ने कहा बच्चे कभी नाम रूप में नहीं फंसना, ये देह अभिमान है, नाम रूप में फंसना, किसी देह पर आकर्षित होना। हम तो सन्यासी है, बेहद के सन्यासी है ना। सन्यासी जो बनते हैं ना, पता है आपको उनकी अलग अलग किताबें आती है। सन्यासी जो बनते हैं उनको कैसे वैराग्य दिलाना होता है उसकी कई किताबें हैं। एक किताब मेरे हाथ में आ गई थी तो उस किताब में क्या दिखाया था कि एक सुंदर स्त्री है, एक सुंदर स्त्री और बहुत ही सुंदर है, लेकिन उसका उसके बाद नेक्स्ट चित्र दिखाया उसी का हड्डियों का ढांचा। तो वो जैसे उनको कह रही है कि क्या आप इस हड्डियों के ढांचे से प्यार कर रहे हो। हाँ स्त्री क्या मतलब हड्डियों का ढांचा है। फिर जैसे बाबा कहते हैं नारी नर्क का द्वार है, नारी सर्पणी है, वो आग है, हम घी के घड़े हैं, ये सब उस किताब में था। बाबा ऐसे ही नहीं कहते, तो वैराग दिलाते हैं और वैराग दिलाने के बाद वो घर बार छोड़ देते हैं। और बाबा कहते हैं पुरुषों को तो सहज है घर बार छोड़ना, लेकिन बेचारी स्त्रियां कहाँ जाए, वो तो छोड़ नहीं सकती है, वो तो जैसे कैद है, उनको तो संन्यास करने का कोई अधिकार नहीं है। पुरुषों को तो फिर भी है। बाबा ने उस दिन भी कहा मुरली में था कि गवर्नमेंट सोचती है अभी कोई लाइसेंस निकालेंगे, ऐसे नहीं घर से रूठा और सन्यासी बन गया, लाइसेंस चाहिए, सन्यासी बनने के लिए भी लाइसेंस होना चाहिए। पर है ना, छोड़ दिया गए। कम से कम 1 करोड़ भारत में सन्यासी होंगे जो गेरुआ वस्त्र पहन करके अलग अलग मठों में रहते हैं, और कई तो परिवार के थे बस घर छोड़ के चले गए। मैं कहीं गई थी बॉम्बे में, एक भाई ज्ञान में थे तो उन्होंने बहुत अच्छा अनन्य बाबा का बच्चा, तो उसने अपने घर में निमंत्रण दिया था, उसका भाई ने वो भाई घर छोड़ के चला गया था, तो पत्नी उसकी वाइफ जो थी वो भी थोड़ा अभी घर छोड़ के चला गया, अभी कहाँ गया पता ही नहीं। तो उसकी वाइफ को फिर कैसे ज्ञान में लाए बना भाभी को, तो हमको कहा था कि आप उनसे मिलो। तो जब मैं मिलने के लिए गई तो हमने पूछा उनकी वाइफ से जो भाग गया जो चला गया था कि वो कहाँ गया। उसने कहा बस बहन जी पता नहीं, वो कोई आश्रम में जाके रहता है और कभी कभी आता है, मुखड़ा दिखाता है फिर चला जाता है, बताता भी नहीं है मैं कहाँ रहता हूँ। तो किसी ने पीछा किया ये कहाँ रहता है जाकर, तो कहा कि वो हरिद्वार ऋषिकेश में कहाँ कोई मठ में जाके रहता है और आता है तो बिल्कुल एक दिन रहा, थोड़ा बहुत रहा और फिर चला गया, सन्यासी बन गया। अभी कौन रोके उसको, सुनता भी नहीं है, चलो जो भी है। लेकिन फिर वो ज्ञान में आ गए तो उसको कितनी शांति मिली कि चलो अभी क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर जो भाई ज्ञान में था वही फिर अपने भाभी और उनके बच्चों को वही पाल रहा था, वो भाई तो पता नहीं कहाँ चला गया। तो कहने का भाव है कि वो सन्यासी बन जाते हैं, वैराग दिलाते हैं, पर बाबा हमको कहते छोड़ना कुछ भी नहीं है, जिम्मेदारी पूरी निभानी है। ये बेहद का सन्यास है, वो हद का सन्यास है। वो तन को कितना कष्ट देते हैं, देखा है आपने? भक्त जब जाते हैं तीर्थों पर तो शरीर पैदल चलते हैं, पैदल तो क्या, कईयों को हमने देखा जिसको बाबा कहते हैं ना कलाबाजी खेलते हुए, वो गुलाटी कलाबाजी खेलते हुए सिर और पैर को मिलाते हुए जाते हैं यात्रा पर, हमने देखा है कितना कष्ट देते हैं। और तीर्थों पर तो क्या नहीं, कांटों की शैया पर लेटे हैं, कितना खून भी बहरा होगा, कष्ट देना अपने आप को। भक्ति में तो बहुत कुछ है। और बाबा कहते बाबा बच्चों को कष्ट नहीं देना चाहते, बहुत बच्चे तुमने कष्ट उठाया भक्ति मार्ग में। हाँ, किसने बहुत भक्त कष्ट उठाया भक्ति में, हाथ उठाओ, किसने उठाया है? अच्छा, हाथ उठ रहे हैं, ओके। कष्ट उठाया है? अमरनाथ की यात्रा की है किसी ने? अच्छा, अमरनाथ की भी यात्रा की है, वेरी गुड। कुलाटी खाते हुए? तो देखो कितना कष्ट उठाया। अब बाबा कहते शरीर को कष्ट मत दो, लेकिन इस तन से सेवा करो। वहां तो कष्ट देकर के अपने आप को दुखी कर देते हैं, पर ये तन तंदुरुस्त रहेगा तो सेवा करेगा ना। अगर तन बीमार है तो सेवा क्या करेंगे? इसलिए तन को भी तंदुरुस्त रखो और दूसरा मन को भी शक्तिशाली बनाओ। वहां पर क्या करते हैं, मन को दमन कर देते, चित्तवृत्ति निरोध, सप्रेशन ऑफ ऑल थॉट्स, बिल्कुल कुछ भी सोचना नहीं है, ब्लैंक। अब बाबा कहते मन का तो काम ही सोचना है, मन में इतने ऊंचे विचार लाओ। योग हमारा क्या है, रोज स्वमान देते हैं बाबा हम बच्चों को, कितने सुंदर टाइटल देते हैं बाबा से, कैसे रूढ़िहान करना सिखाते हैं, सच्ची प्रीत बाबा से कैसे रखो वो बाबा मुरली में सिखाते हैं। तो ये सब जो सिखाते हैं बाबा, उस अनुसार मन को बिजी रखो। तो मन को भी काम बाबा देते हैं, तन को भी एक्टिव रखो और धन भी बाबा कहते सफल करो। कोई भी ये धन आपका व्यर्थ न जाए, ट्रस्टी बन जाओ, कोई गलत काम में धन न लगना चाहिए। ऐसे नहीं मैं कमाता हूँ तो मैं जो चाहूँ सो करूँ, दुनिया में तो ऐसे आजकल के युवक, मैं कमाता हूँ ना तो मैं सिगरेट पीऊँ, बीड़ी पीऊँ, हाँ कुछ भी शराब पीऊँ, जुआ खेलूँ, माँ बाप को इतने दुखी कर देते हैं। मैं कमाता हूँ ना, मैं जो चाहूँ सो करूँ। अरे बेटा ये मत करो, हाँ ये धन वैल्यूबल है, लेकिन नहीं मैं कमाता हूँ। और बाबा क्या कहते हैं, ट्रस्टी होके रहो, कोई भी ऐसा कर्म धन से मत करो जो श्री मत के विरुद्ध हो, ये बहुत जरूरी है। हर कर्म श्री मत अनुसार करो, ट्रस्टी होकर रहना माना ये भी बाबा का है, बाबा का समझो, ये तन मन धन बाबा का है, बाबा की सेवा में लगाना है, फिर लौकिक भी संभालो। पर कैसे रहो ये है, हाँ जिम्मेदारी निभाते हुए क्या करना, कैसी स्थिति बनाना, कैसी स्थिति, जीवन मुक्त स्थिति। बन सकती है ना या नहीं बन सकती है, जो समझते बन सकती है हाथ उठाओ। अच्छा वेरी गुड, अपने लिए ताली बजाओ। बिल्कुल बन सकती है, विघ्न तो आएंगे, बाबा कहते हैं बच्चे विघ्न आएंगे, लेकिन कौन है मेरा साथी, मैं विजयी रत्न हूं, मैं विजयी रत्न हूं ये नशा चढ़े। अर्जुन को भी यही कहा ना, तू विजयी हो, इस युद्ध में तुम विजयी बनोगे और विजयी बनोगे तो स्वर्ग का मालिक बनोगे। अगर तुम हार भी गए तो भी तुम स्वर्ग में आओगे। अब वो तो स्थूल युद्ध दिखा दिए, लेकिन है तो ये माया से युद्ध ना। तो माया से हारे हार है, माया पर जीते जीत, माया जीते जगत जीत, ये नहीं मन जीते जगत जीत। मन को मारना नहीं है, लेकिन दृष्टि जाए ही नहीं, क्यों जाए। एक मैं किताब पढ़ रही थी, सोक्रेटिस है ना, बहुत बड़े फिलोसोफर होकर गए हैं, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो, ये सब ग्रीक फिलोसोफर्स थे। तो उसमें एक वो उनका वर्णन आता है कि सोक्रेटिस जो था वो बहुत इतना माना फिलोसोफर, तो उनकी कैसे बुद्धि होती है। तो वो रोज सड़क पर जो दुकानें होती थी ना, तो बाहर उनका कोई शोकेस होता है बाहर दुकान के बाहर, तो उसमें बहुत चीजें शोपीस के रूप में रखते हैं दिखाने के लिए कि दुकान में क्या है। तो रोज आता था और वो शोकेस में देख करके चला जाता था, दुकानों में आता था, रोज आता था। तो एक दिन एक दुकान वाले ने उनसे पूछ लिया कि आप रोज आते हो, इतना समय देते हो, ये सब चीजें देख करके चले जाते हो, आप कुछ खरीदते क्यों नहीं हो, समय भी देते हो, क्या आपके पास पैसा नहीं है क्या? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फ्री ले लो भले, लेकिन आप रोज आते हो तो क्या, आप क्यों रोज आते हो, आपको क्या चाहिए? उसने पता है क्या जवाब दिया, उसने कहा कि मैं इसलिए नहीं आता हूं कि मुझे कुछ खरीदना है, लेकिन मैं एक एक चीज देखता हूं और क्या इसके बिना भी मुझे चलेगा, इसके बिना भी मुझे चलेगा, इसके बिना भी चलेगा, चलेगा तो मुझे चाहिए नहीं। तो पता कैसे चले, पता कैसे चले कि इसके बिना भी मुझे चलेगा, देखूं तब तो पता चले ना क्या चीज है। इसको कहते हैं बेहद का वैराग्य। अब कई जगह जाते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं, चलो शॉपिंग भी करते हैं, जो नहीं चाहिए तो भी खरीद लेते हैं, खरीद लेते हैं। अब बाबा कहते हैं जरूरत क्या है, एकदम न्यारे प्यारे हो जाओ, ये धन बाबा का है, ठीक है। चलो ओम शांति, ओम शांति। अभी आपके, अब इसके बाद निर्वैर भाई आपका क्लास कराएंगे, तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है।
Yeah.